एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक भारत की नब्ज पकड़ने की कोशिश करती है, क्रेग जेफरी की मॉडर्न इंडिया।
हाँ, और ये किताब एक बहुत ही सही समय पर आई है। मतलब हर तरफ भारत की ही चर्चा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक ग्लोबल पावर।
बिल्कुल।
लेकिन फिर हम बेरोजगारी, सामाजिक तनाव, ऐसी खबरें भी सुनते हैं, तो ये किताब इन्हीं विरोधाभासों को, इन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है।
सही कहा, और आज हम शायद इसी सवाल को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की ये जो विरोधाभास हैं, ये इसकी ताकत है या फिर कोई छिपी हुई कमजोरी।
हाँ, एक दिलचस्प सवाल है।
तो ये किताब उन सभी के लिए है जो इनक्रेडिबल इंडिया या भारत विश्व गुरु जैसे नारों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत को समझना चाहते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और कह सकते हैं उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, पर चर्चा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है, क्रेग जेफरी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोई ऐसे विदेशी स्कॉलर नहीं है जो आप जानते हैं दिल्ली के किसी होटल में बैठकर भारत पर किताब लिख रहे हों।
सही कहा।
वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी जो असली पहचान है वो उनका जमीनी काम है।
अच्छा।
उन्होंने 2 दशकों से ज्यादा का समय उत्तर भारत में बिताया है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे शहरों में।
अरे वाह।
वो अच्छी हिंदी बोलते हैं और उन्होंने वहां के युवाओं के साथ इतना वक्त गुजारा है कि वो भारत को अंदर से महसूस कर पाती हैं।
तो क्या यही वजह है कि वो टाइम पास जैसे मुद्दों को पकड़ पाए? उनकी वो पिछली किताब बहुत चर्चित हुई थी।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। उन्होंने देखा कि कैसे पढ़े लिखे नौजवान डिग्री लेकर भी मतलब बेकार घूम रहे हैं, और इस स्थिति को उन्होंने टाइम पास का नाम दिया। ये सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की हताशा और इंतजार की कहानी थी। यही नजरिया उन्हें खास बनाता है। वो आंकड़ों के पीछे की जो इंसानी कहानी है ना, उसे पकड़ते हैं।
तो फिर इस किताब का केंद्रीय विचार क्या है? अगर एक लाइन में बताना हो तो जेफरी आधुनिक भारत के बारे में क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि आधुनिक भारत को किसी एक सीधी सादी कहानी में नहीं बांधा जा सकता।
मतलब
भारत की जो असलियत है वो इसके विरोधाभासों के बीच के तनाव में छिपी है। जैसे एक तरफ हमारे पास मंगलयान है और दूसरी तरफ करोड़ों घरों में आज भी साफ पीने का पानी नहीं है। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भी यहीं रहते हैं।
तो किताब का मुख्य मिशन इसी सवाल का जवाब देना है कि 21वीं सदी के इस जटिल भारत को आखिर समझा कैसे जाए।
हाँ, और जेफरी का तर्क है कि इसका जवाब भारत की जो विशाल युवा आबादी है ना, उनकी उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं और उनकी चिंताओं में छिपा है।
अच्छा।
और यहीं पर वो एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखती हैं, वर्नैक्युलर मॉडर्निटी।
वर्नैक्युलर मॉडर्निटी, इसका मतलब हुआ देसी आधुनिकता। ये तो सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है
ना?
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बस पश्चिम को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मॉडर्निटी को अपना देसी तड़का लगा रहे हैं।
बिल्कुल सही समझा, क्या बढ़िया कहा आपने। जैसे जाति व्यवस्था को ही देख लीजिए।
हाँ।
हमें लगता था कि मॉडर्न होने पर जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाति ने अपना रूप बदल लिया और अब वो चुनाव जीतने और राजनीतिक गोलबंदी का एक मॉडर्न टूल बन गई है।
सही बात है।
तो भारत पश्चिम की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी संस्कृति के हिसाब से आधुनिकता को एक नया अपना रूप दे रहा है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जेफरी आज के भारत को समझने के लिए इतिहास से शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि हमारा जो अतीत है वो आज भी हमारे साथ चल रहा है।
हाँ, और वो ब्रिटिश राज के एक बहुत ही जटिल विरासत की बात करती हैं। एक तरफ अंग्रेजों ने संसदीय लोकतंत्र, एक यूनिफाइड सिविल सर्विस और रेलवे जैसे इंस्टीट्यूशंस दिए
जो आज भी हमारे ढांचे का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ उनका शासन शोषण पर आधारित था, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा और फूट डालो और राज करो की नीति से समाज में धार्मिक तनाव के बीज बोए।
कि उदय से जोड़ते हैं, क्योंकि बंटवारे का दर्द तो आज भी महसूस किया जाता है।
वो सीधे सीधे इसे जोड़ती हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक 1947 का बंटवारा एक ऐसा सदमा था जिसने भारत की आत्मा पर एक गहरी चोट छोड़ी है। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में वो भारत की पहचान को लेकर चल रहे आज के संघर्ष को देखती हैं।
मतलब दो तरह के भारत की लड़ाई।
हाँ, एक तरह से एक तरफ नेहरू का धर्मनिरपेक्ष बहुलतावादी भारत का विचार है जहां सभी धर्मों के लिए बराबर जगह हो, और दूसरी तरफ हिंदुत्व का विचार है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित करना चाहता है।
और जेफरी कहते हैं कि आज की राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष इसी सवाल को लेकर है।
हाँ, कि भारत की आत्मा क्या है।
ये तो हुई राजनीतिक पहचान की बात, लेकिन एक और पहचान है जो लोगों की जिंदगी तय करती है, उनकी आर्थिक पहचान। 1991 के सुधारों ने तो सब कुछ बदल दिया था, है ना?
बदल तो दिया, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं बदला। जेफरी का तर्क है कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने दरअसल दो भारत बना दिए।
दो भारत?
हाँ, एक वो भारत है जो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है, जहाँ चमचमाते मॉल हैं, आईटी कंपनियां हैं और एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है। ये शहरी सर्विस सेक्टर वाला भारत है।
और दूसरा भारत?
दूसरा भारत वो है जो बहुत पीछे छूट गया है। ये ग्रामीण भारत है, कृषि पर निर्भर भारत है, और शहरों में अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों का भारत।
अच्छा।
और यहीं पर जेफरी जॉबलेस ग्रोथ का जरूरी कॉन्सेप्ट सामने लाती हैं।
रोजगारहीन विकास?
हाँ।
ये जॉबलेस ग्रोथ वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि हम तो हमेशा सुनते हैं कि GDP बढ़ रही है, भारत तरक्की कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश तो अमीर हो गया पर देश के ज्यादातर लोग नहीं?
काफी हद तक हाँ, यही मतलब है। जेफरी का तर्क है कि भारत का जो सर्विस सेक्टर विकास का इंजन बना हुआ है ना, वो उस तादाद में अच्छी स्टेबल नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रहा जितनी की जरूरत है।
और इसका नतीजा?
नतीजा ये है कि करोड़ों युवा डिग्रियां लेकर भी या तो बेरोजगार हैं, या फिर ऐसी छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं जो उनकी योग्यता से बहुत कम है, और यही हताशा और इंतजार की स्थिति
टाइम पास को जन्म देती है।
बिल्कुल।
हाँ, ये बात सुनकर मुझे मेरे उस कजन की याद आती है। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, पर वो 3 साल से एक सही सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा है।
देखिए, ये हर घर की कहानी है।
तो ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की हकीकत है। और ये जो बेचैनी है, ये कहीं ना कहीं समाज और राजनीति में भी तो दिखती होगी।
बिल्कुल। और यही बेचैनी और हताशा हमें सामाजिक विश्लेषण की तरफ ले जाती है। जेफरी एक और बड़ी गलत फहमी दूर करती है।
वो क्या?
कि जाति व्यवस्था अब एक पुरानी बात हो गई है।
एक मिनट, ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब जाति व्यवस्था मॉडर्न भारत में खत्म नहीं हुई, बस उसने अपना रूप बदल लिया है।
एग्जैक्टली।
क्योंकि हम तो अक्सर यही मानते हैं कि शहर आने पर या पढ़ लिख जाने पर जाति पीछे छूट जाती है।
जेफरी कहती है कि ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये सच है कि शहरों में छुआछूत या खान पान के जो पारंपरिक नियम थे वो कमजोर जरूर हुए हैं,
लेकिन
जाति एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक पहचान बन गई है। चुनाव जाति के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं।
सही बात है।
शादी ब्याह आज भी ज्यादातर अपनी ही जाति में होते हैं। तो आधुनिकता ने जाति को खत्म नहीं किया, उसे एक नया मॉडर्न अवतार दे दिया है।
और यही विरोधाभास शायद हमें जेंडर के मामले में भी दिखता है। मतलब एक तरफ महिला पायलट, CEO, राजनेताएं, और दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की डरावनी खबरें।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि समाज आधुनिकता और परंपरा के बीच कैसे संघर्ष कर रहा है। कानून और शिक्षा महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो समाज की गहरी पितृसत्तात्मक सोच है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो अब भी एक बड़ी बाधा है। और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं।
तो हमने देश के अंदर के टेंशन्स की बात की, पर दुनिया में भारत की क्या जगह है? क्या हम सच में एक सुपर पावर है जैसा कि अक्सर कहा जाता है?
जेफरी शब्द से बचती हैं। वो भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति कहने के बजाय एक सतर्क शक्ति कहती हैं।
सतर्क शक्ति, अ कॉशियस पावर। ये सुनने में थोड़ा मतलब कमजोर लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि विश्व गुरु बनने के दावे सिर्फ खोखले हैं?
नहीं, खोखले नहीं बल्कि यथार्थवादी हैं। जेफरी का मतलब है कि भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तो हैं, लेकिन उसकी अपनी घरेलू चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि वो खुलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
जैसे कि?
जैसे गरीबी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं, ये सब भारत को बाहर की दुनिया में एक सीमा में बांध देती हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति बहुत व्यावहारिक है, अपने आर्थिक हितों को साधना और चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ जो जटिल संबंध है उनको मैनेज करना।
तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि भारत को समझने के लिए उसके विरोधाभासों को स्वीकार करना होगा।
हाँ,
यहाँ हर हा के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, विरोधाभास ही भारत का सच है। और दूसरा मुख्य संदेश युवा आबादी से जुड़ा है। ये पीढ़ी आकांक्षाओं से भरी है, ग्लोबल दुनिया से जुड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
लेकिन
लेकिन जेफरी की वो लाइन याद आती है कि आधुनिक भारत की सबसे जरूरी कहानी उस पीढ़ी की है जो वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के चमकदार वादों और एक ऐसे श्रम बाजार की कठोर हकीकत के बीच फंसी हुई है जहां उनके लिए कोई जगह नहीं है।
ये बहुत गहरी बात है।
अगर जॉबलेस ग्रोथ की समस्या हल नहीं हुई तो यही युवा आबादी सामाजिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है।
और तीसरा बड़ा टेक अवे भारत की आत्मा के लिए चल रहा संघर्ष है।
हाँ।
क्या भारत एक सेक्युलर प्लुरलिस्टिक देश बना रहेगा या एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इसे फिर से परिभाषित किया जाएगा? जेफरी इस सवाल को आज के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस मानते हैं।
और ये सवाल देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। और चौथा वही देसी आधुनिकता वाली बात
कि आधुनिकता का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
बिल्कुल, भारत अपनी शर्तों पर मॉडर्न हो रहा है, चाहे वो राजनीति में जाति का इस्तेमाल हो या बॉलीवुड के गानों में वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का फ्यूजन। भारत चीजों को अपना रहा है लेकिन उन्हें अपने रंग में ढाल रहा है।
तो ठीक है, ये सब समझना मतलब इंटेलेक्चुअली तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कोई आम इंसान इस जानकारी का क्या करे?
इसका बहुत गहरा और प्रैक्टिकल महत्व है। सोचिए, कोई युवा जो अच्छी डिग्री के बाद भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो शायद खुद को अकेला और नाकाम महसूस करता होगा। लेकिन जब वो जॉबलेस ग्रोथ और टाइम पास जैसे कॉन्सेप्ट को समझता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है।
हाँ, कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।
बिल्कुल, यह समझ उसकी हताशा को कम कर सकती है और उसे एक बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकती है।
और अगर कोई बिजनेस या निवेश के बारे में सोच रहा है उसके लिए?
अरे, उसके लिए तो दो भारत की समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। जो प्रोडक्ट या सर्विस मुंबई के पॉश इलाके में चलेगी, जरूरी नहीं कि वो बिहार के किसी गांव में भी सफल हो।
सही बात है।
मार्केट को एक जैसा नहीं समझा जा सकता। आपको दोनों भारत की जरूरतों, उनकी खरीदने की क्षमता और उनकी आकांक्षाओं को अलग अलग समझना होगा।
और एक नागरिक के तौर पर शायद ये हमें बेहतर वोटर बनाता है कि हम टीवी पर चल रही बहसों और नारों से आगे देख सकें।
बिल्कुल, ये किताब हमें एक फ्रेमवर्क देती है। जब हम किसी राजनीतिक रैली या सामाजिक विरोध को देखते हैं तो हम उसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखते
बल्कि उसके पीछे काम कर रही ताकतों को समझते हैं।
हाँ, जैसे जाति, बेरोजगारी, बदलती आकांक्षाएं, इनके संदर्भ में हम उसे बेहतर समझ सकते हैं। ये हमें भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से हटकर विश्लेषण करने में मदद करती है।
इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा दिमाग में रह गई वो देसी आधुनिकता का आइडिया है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि हम सिर्फ नकल नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी जरूरतों और संस्कृति के अनुसार चीजों को एक नया अनोखा रूप दे रहे हैं। ये भारत की क्रिएटिविटी और लचीलेपन को दिखाता है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली हिस्सा युवाओं पर केंद्रित विश्लेषण रहा। ये सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की आशाओं, सपनों और हताशाओं की कहानी है। और यही पीढ़ी सच में देश के भविष्य को तय करेगी। ये किताब हमें सिखाती है कि भारत को समझने के लिए इसकी जटिलताओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। जो चीजें एक दूसरे का उल्टा लगती हैं, असल में वही मिलकर भारत की सच्ची और पूरी तस्वीर बनाती हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।